वैधवला पुस्तक नववी लेक्चर नंबर 8।
ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयनियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाऊनं रणुभागभागमेतो विजत्थदोषस्स संभवो नत्ति तम्पणमियजिननाहम्
यह श्री भीमसेनाचार्य रचित जयधवला टीका है जो कषाय पाहुल तथा चुन्नी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुंडर भट्टारक तथा यतिशुभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। नवी पुस्तक जो बंधक नाम का अर्थाधिकार है, उसमें संक्रमण की बात देखते हुए उत्तर प्रकृति संक्रमण में अभी हम पृष्ठ संख्या 46 पर आ गए। 46 अपना भी जघन्य अनुभाग संक्रामक का काल कितना है उत्तर प्रकृतियों में, उसकी बात चल रही थी। तो एक जीव की अपेक्षा यहाँ काल देख रहे थे। तो मिथ्यात्व का जघन्य अनुभाग का संक्रमण लगातार चले तो कितने काल तक चलता है, तो जघन्य से भी अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट से भी अंतर्मूर्त, उससे ज्यादा नहीं। अजघन्य का कितना चले तो जघन्य काल अंतर्मूर्त, अजघन्य के बाद फिर
असंख्यात लोग,
और फिर लंबा काल चलता रहे तो असंख्यात लोग,
असंख्यात लोग।
वैसे 8 मध्य कषायों की भी बात उन्होंने बताई। सम्यक प्रकृति का जघन्य का काल कितना है, वो कब होता है तो क्षपणा के वो कृतकृत्य वेदक के एक, यानी वो तो एक समय प्लस आवली वाली के, यानी एक समय के लिए होगा। उसी को जघन्य को, उसी को उत्कृष्ट को, क्योंकि वहीं पर जघन्य होता है अन्यत्र नहीं। और उसका अजघन्य का कितना होगा काल, अजघन्य ने उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट सारा अजघन्य, जो जघन्य नहीं वो सारा अजघन्य है।
शादी की 132,
तो किसी ने जघन्य काल एक अंतर्मूल, किसी ने समय को प्राप्त किया औष्णिक सत्ता तैयार हुई तो उत्कृष्ट अनुभाग रहा, उत्कृष्ट है अजघन्य, अंतर्मूर्त में क्षपणा कर ली तो अजघन्य का जघन्य काल अंतर्मूर्त। और अजघन्य का उत्कृष्ट काल कितना है तो हमने देखा तो 3 बार पल्ले का असंख्या बीच बीच में और 2 बार शासक था, ये उसका अजघन्य का उत्कृष्ट काल देखा था। अभी सम्यक मिथ्यात्व की बात, तो सम्यक मिथ्यात्व का जघन्य संक्रामक का काल कितना है, एक अंतर्मूर्त, क्योंकि अंतिम फाली जब है उसकी कांडक घात होता है, अंतिम फाली नहीं पूरा अंतिम कांडक घात अंतर्मूर्त तक उसका जघन्य ही रहेगा। फिर अनंतानुबंधी के जघन्य का कौन है तो हमने देखा था विसर्जना के बाद जो संयोजना करता है नया बंध जघन्य करता है पहले समय में, एक समय के लिए ही मात्र, उसके अवली के बाद उसका जघन्य संक्रमण होगा तो उसका काल कितना है तो एक ही समय है, अधिक नहीं हो सकता। और उसका अजघन्य क्या हो सकता है, जो जघन्य नहीं वो सारा अजघन्य, तो किसी जीव को अनादि अनंत वो अजघन्य ही रहेगा, जिसके अनादि शांत, अनादि शांत कैसे होगा कि अनादि से है और विसंजना में नष्ट हुआ तो अनादि शांत हो गया, सादि शांत यानी संयोजना पर एक समय के लिए उसने जघन्य बंद किया और बाद में संक्रमण किया उसके बाद अजघन्य हुआ फिर विसंयोजना की तो ये जघन्य काल उसका हो जाएगा,
जघन्य अंतर
अजघन्य का जघन्य काल अंतर्मुख। सादी शांत, सादी शांत में दो भंग, दो जघन्य और उत्कृष्ट, सादी शांत में दो भंग, दो भेद, जघन्य, जघन्य में जघन्य, क्योंकि विषयोजना के बाद संयोजना की, पहले समय में जगन्य बंद किया, उसके आवली के बाद जगन्य संक्रमण हुआ, फिर उसके पश्चात दूसरे तीसरे समय में अजगन्य 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 चला। अंतर्मुहूर्त में समय को भी प्राप्त किया, फिर दोबारा विसर्जना की तो सत्ता नष्ट हुई, तो अजगन्य भी संक्रमण रुक गया, तो उसका मिनिमम काल अंतर्मुहूर्त। अजगन्य का सादी शांत उत्कृष्ट काल कितना होगा? अर्ध फुटगल पराव, क्योंकि पहली बार एक बार किया और फिर लास्ट में जाके उसने किया। जब जगन ने कहा तो मिनिमम पॉसिबल अनुभाग लेना। हाँ, आपका ऐसा कहना है जब संयोजना के विसंयोजना के बाद संयोजना करता है तो क्या सब जीवों का अनुभाग समान होगा? तो नहीं, उसमें जिसका जगन है उसकी बात है। यहाँ पर तत्प्रायोग्य जो उसके परिणाम होंगे, जो जगन्य में जगन्य अनुभाग बांधेगा।
नहीं, नष्ट सत्ता में से नष्ट हो गया और वापस बंद होगा,
वापस जब बंद होगा तो उसमें अनुभाग में वेरिएशन होगा कि नहीं होगा, ऐसा इनका कहना। तो तत्प्रायोग्य जगन्य परिणाम से बांधे उसी के होगा जगन्य अनुभाग। अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक तो हमने पढ़ा था। अब चार संज्वलन और पुरुष वेद की बात करेंगे। चतु संज्वलन पुरुष वेदानं जहन्न अनुभाग संकामो केवचिरम कालादो होदी। चार संज्वलन और पुरुष वेद के जघन्य अनुभाग के संक्रामक का कितना काल है? जब ये प्रश्न ऐसा आता है तो पहले में पहले विचार करना कि जघन्य का स्वामित्व कौन होगा। तो हमने देखा था क्रोध संज्वलन की क्षपणा करने वाला, क्रोध वेदक के अंतिम समय में जो बंध किया है अनुभाग का, वो मिनिमम पॉसिबल है। वो नवक बंध जो है, दो आवली और दो समय कम दो आवली, उस समय उसकी वो अंतिम अनुभाग यानी उसके अंतिम फाली खिलेगी, तो वहां उसका जघन्य अनुभाग होगा। तो एक समय के लिए होगा। पढ़ेंगे हम यहाँ, यह सूत्र सुगम है। जहन नुक्कस्य न एय समोह, एय भी लिखते हैं, एय समोह के एय समोह। कल भी बात आई थी ना, एय का एय,
कल हमने ग किया था ना,
दोनों ही बात आती होगी शायद से। वहाँ ए में समोह हुआ था, ए समोह या ए ये जीवेण, ए ये भी शब्द आता है, ए ये कल ए में हुआ था, उसको हमने ग किया था। हाँ, तो एक समय है उसका जगन्य उत्कृष्ट काल, एक समय, क्योंकि तीन संज्वलन और पुरुष वेद संबंधी अंतिम अनुभाग बंध की अंतिम फाली के समय, अंतिम अनुभाग बंध यानी जो अंतिम बंध हुआ है उसमें स्थिति भी है और अनुभाग भी है। हम यहाँ अनुभाग की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए अंतिम अनुभाग बंध कह दिया। उसकी अंतिम फाली के समय, ये तो तीन संज्वलन और पुरुष वेद में यही रूल होगा, और लोभ में क्या होगा? वो तो एक समय जो बाकी रहता है, अवली प्लस एक समय, तब संक्रमण होगा लास्ट उसका। तो था लोभ संज्वलन की संज्व जो है कि घ है, वो ठीक कर देना। तथा लोभ संज्वलन की भी सकशा अवस्था में एक समय अधिक एक आवली काल शेष रहने पर सकशा अवस्था लोभ संज्वलन की यानी दसवा गुण स्थान, एक समय अधिक एक आवली काल शेष रहने पर उक्त काल उपलब्ध होता है, वहां उसका जघन्य संक्रमण पाया जाता है। अजघन्य अनुभाग संकामो अनंतानुबंधीनम भंगो, उनके अजघन्य अनुभाग के संक्रामक का अनंतानुबंधियों के समान भंग है। जिस प्रकार अनंतानुबंधियों के अजघन्य अनुभाग के संक्रामक के तीन भंग कहे, उसी प्रकार इनकी भी प्ररूपणा करनी चाहिए, क्योंकि इसमें कोई विशेषता नहीं है। कौन सा होगा, तीन भंग कौन से हो गए?
अनादि अनंत,
हाँ, अनादि अनंत अनादि शांत और सादी शांत
सादी शांत
तो सादी शांत का जगन्य काल कितना होगा
अंतर्भूत
कैसे बोलो
श्रेणी में असंक्रामक हो गए और वापस संक्रामक
श्रेणी में उपशम श्रेणी में उपशम श्रेणी में कहना चाहिए उपशम श्रेणी में असंक्रामक हुआ और फिर वापस
संक्रामक
हुआ तो उसकी शादी हो गई दोबारा उपशम श्रेणी पर चढ़ गया तो फिर अंत हो गया उसका जगन्य तो उसमें है ही नहीं उपशम श्रेणी में तो जगन्य है ही नहीं जगन्य तो क्षपक श्रेणी में ही है तो उपशम श्रेणी असंक्रामक हुआ था फिर संक्रामक हुआ तो अजगन्य ही रहा फिर दोबारा उपशम श्रेणी चढ़ी तो अजगन्य से फिर असंक्रामक हो गया यानी उसका अजगन्य का काल अंतर्मूर्त रहा और उत्कृष्ट काल ये उपार्ध पुद्गल परावर्तन शुरू में पहले भव में एक बार उपशम श्रेणी चढ़ के उतरा था तब से शुरू हुआ अजगन्य
और लास्ट में
और फिर जब अर्ध पुद्गल परावर्तन के अंत में
शपक श्रेणी में
जगन्य कर दिया तो अजगन्य का अंत हुआ तो ये इतना इन्हें कथन वैसा ही है जैसा अनंतानुबंधी में आगे इत्थि नौंसे वेद छ नौकसायाणम जहन अनुभाग संकामो केवचिरम कालादो होदी स्त्री वेद नपुसक वेद और छ नौकसायाम के जघन्य अनुभाग के संक्रामक का कितना काल है उसका स्वामी कौन देखा था हमने
खाली
सपना में कह के नहीं चलेगा सूर्योदय से चढ़ने वाला अंतिम अनुभाग कांडक पूरा अंतर्मूर्त इसलिए उसका जगन्य काल भी यानी जगन्य का काल भी अंतर्मूर्त कहेंगे उसी को उत्कृष्ट कहो जगन्य को यह सूत्र सुगम है जहन्य उपकस्य न अंतोमूर्तम जगन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है क्योंकि अंतर्मूर्त प्रमाण उत्कीर्ण काल से युक्त उत्कीर्ण काल समझते हैं किसको कहना भूल गए कांडक घात होने के लिए जो काल लगता है ना उसको उत्कीर्ण काल कहते हैं उसको कांडकोत्कीर्ण भी कहते हैं अब स्थिति उत्कीर्ण में यानी स्थिति कांडक घात में उसका जो काल है वो अलग है उसको स्थिति कांडोत्कीर्ण काल कहेंगे और इसको अनुभाग कांडकोत्कीर्ण काल कहेंगे या मात्र उत्कीर्ण काल कहा क्योंकि अपना विषय अनुभाग संबंधी चल रहा है यानी कांडक घात के लिए जितने समय लगते हैं अंतर्मूर्त इसको कांडक घात का काल कहेंगे कांडक का प्रमाण अलग बात है उसको कांडक आयाम कहेंगे ये बात ख्याल में आती है कितना लंबा कांडक है अभी स्थितियों में विशेषता ऐसी बात होती है स्थिति में वहां भी समय कहेंगे और कांडक का घात होने के लिए भी समय कहेंगे तो जैसे पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण स्थितियों का नाश हो गया तो कांडक कितना लंबा है तो पल्ले का असंख्यात का तो उसको कांडक का आयाम कहेंगे और वो कार्य जो है कितने समयों में हुआ तो अंतर्मूर्त में हुआ तो उसको कहेंगे कांडकोत्कीर्ण काल। अब यहां तो अनुभाग की चर्चा है तो उत्कीर्ण काल इसका भी अंतर्मूर्त है उससे युक्त शपक संबंधी अंतिम अनुभाग कांडक में उक्त प्रकृतियों के जघन्य अनुभाग संक्रम की प्राप्ति हुई है ये तो हमने देखा था ना स्वामित्व में हमने कल देखा था कि स्त्रीवेद वाले के स्त्रीवेद के उदय से ही चढ़ने वाले के उसका अंतिम अनुभाग कांडक घात होता है वो पूरा कांडक का जो काल है अंतर्मूर्त तब तो उसका जघन्य ही रहता है इक्वल रहता है अजघन्य अनुभाग संक्रामयस्य तीन भंगा उनके अजघन्य अनुभाग के संक्रामक के तीन भंग हैं यह सूत्र सुगम है तथ जो सो साधियो सपज्जवसिदो सो जघन्येन अंतोमूर्तम् उनमें से जो साधिशांत भंग है उसका जघन्य काल अंतर्मूर्त है ऐसे लेना हमने उपशम श्रेणी से उतरते हुए चढ़कर उतरते हुए
अजगन्य का संक्रमण
क्योंकि सर्वोपशमना से गिरकर सर्वोपशमना ने उपशम श्रेणी उपशांत मोह से गिरकर और सबसे जघन्य अंतर्मूर्त काल तक अजगन्य अनुभाग का संक्रम कर जो पुनः क्षपक श्रेणी पर चढ़कर जघन्य अनुभाग का संक्रामक हुआ है उसके उक्त काल उपलब्ध होता है। दूसरी बार उसको क्षपक श्रेणी पर चलाया। अब इसका उत्कृष्ट काल, उपकस्य न उवड्ड पोगल परियट्टम, उत्कृष्ट काल उपार्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। सर्वोपशमना से गिरकर, सादी शांत काल है ना, इसलिए पहले में पहले असंक्रामक था, फिर अजघन्य हुआ गिरने पर, तथा अर्धपुद्गल परिवर्तन काल तक परिभ्रमण करके उसके अंत में जो उनका असंक्रामक हुआ है उसके उक्त काल उपलब्ध होता है। इस प्रकार ओघ प्ररूपणा समाप्त हुई।
यह स्त्रीवेद नपुंसक वेद में तो 24 की सत्ता वाला को भी उपशम श्रेणी में ले सकते हैं, क्योंकि स्त्रीवेद का असंक्रामक हो गया, वापस संक्रामक हो गया।
मुनि मूल प्रकृतियों में हम उसको असंक्रामक नहीं कह सकते थे, उत्तर प्रकृतियों में अपने अपने प्रकृति को कहेंगे। अब आदेश से जघन्य की बात करेंगे। आदेश से जघन्य ने उस मार्गणा के लिए जो जघन्य होगा उसको हम जघन्य कहेंगे। आदेश से सब नारकी, सब तीर्यंच, मनुष्य पर्याप्त, देव और उपरिम ग्रेवेक तक के देवों में अनुभाग विभक्ति के समान भंग है। हमने कल देखा था ना उसका स्वामित्व, हमने देखा था तो ख्याल में आ जाएगा स्वामित्व किसको देखा था, असंगी से आया हुआ जीव लिया था।
नारकी में असंगी में, तीर्यंच में मनुष्य, अरे एकेंद्रिय से आया हुआ।
हाँ, तीर्यंच मनुष्यों में तो एकेंद्रिय से आया हुआ, जरा देखते इसमें है क्या, ये ले लो आपके पास से।
एक चलेगा
स्वामित्व के बाद काल देखना था ना, एक जीव की अपेक्षा। यहाँ 190 पर कल हमने क्या देखा था, हमने स्वामित्व देखा था। देखो हाँ, कल स्वामित्व देखा था। देखो 189 से नीचे शुरू होता है ये, कल हमने इसको पढ़ा था। विशेषार्थ पढ़ा था क्या इसका? हाँ विशेषार्थ भी पढ़ा था। हाँ ठीक है, हाँ चाहिए फिर पूरा पढ़ा था। हाँ ये लिया था हमने कल पूरा, स्वामित्व के देखते हुए इसको भी देखा था। हाँ
नहीं इसका,
अब अपने मूल पुस्तक पर आना, 47 पेज। में काल आदेश से यहाँ ले लेना 197। कल हमने पढ़ा था वो स्वामित्व पढ़ा था, ये आदेश से। आदेश से नारकियों में मिथ्या तो 12 कषाय और 9 कषायों के जघन्य अनुभाग सत्कर्म का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। वो जघन्य के साथ आया एक समय में, वो तो अजघन्य हो गया। अजघन्य अनुभाग सत्कर्म का जघन्य काल अंतर्मुहूर्त कम 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट काल, क्योंकि उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त तक रहा पहले से लेके आया था, अंतर्मूर्त के बाद अनुत्कृष्ट हुआ। हाँ। तो लगातार उतना ही रहा, यह जघन्य में जघन्य काल।
और उत्कृष्ट काल तो पूरा 10,000
जघन्य काल एक समय, उत्कृष्ट काल अंतर, अजघन्य का जघन्य काल अंतर्मूर्त कम 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट काल संपूर्ण 33,000। अभी सम्यक्त्व का जघन्य अनुभाग सत्कर्म का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। वहां तो अनुभाग विभक्ति की बात चल रही थी, उत्कृष्ट का जघन्य काल,
उत्कृष्ट का जघन्य काल
कैसा होगा?
ये कांडक के पहले एक समय के लिए आया, नहीं कांडक का लास्ट समय यहाँ पे हुआ,
कैसे होगा?
नहीं वो तो नहीं होगा जघन्य। अच्छा जो ये यहाँ पे कि
उद्वेल ना करने वाला ले,
उत्कृष्ट का जगने का
विभक्ति में तो घटित होता है
उद्वेलना का लास्ट कंडक यहाँ पे ले लिया एक समय
उसका जघन्य काल एक समय वो तो घटित होता है जघन्य का काल चल रहा है जघन्य का काल और अजघन्य का काल एक समय है वो उद्वेलना में लेना
जघन्य का
विभक्ति में तो कृतकृत्य वेदक में ले सकते हैं और इसमें अनुभाग संक्रमण में जघन्य का एक समय कैसे होगा
आवली
प्लस
एक
समय बाकी है कृतकृत्य वेदक का और यहाँ आया है तो उसका एक समय घटित होगा और अजघन्य का एक समय
तो कंडक में उद्वेलना कंडक में
उद्वेलना में घटित होगा उद्वेलना करते करते आया है आवली प्लस एक समय बाकी है
और लास्ट कंडक
वो उसने आवली में प्रवेश कर दिया तो असंक्रामक हो गया
वो आवली प्लस एक समय में लास्ट कंडक होगा ना लास्ट फाली का वहाँ पे घात होगा ना
हाँ लास्ट फाली ही
वहाँ पे
उस फिर रुक जाएगा उसका संक्रमण रुक जाएगा दूसरी से लेकर सात दो लाइन पूरे सम्यक मिथ्या तो में सम्यक के समान ही लिया है उसमें तो उद्वेलना वाला ही लेना है उसका नरक में जघन्य तो रहेगा ही नहीं थ्रू आउट तो उत्कृष्ट ही रहेगा और ये जो अभी हमने नरक में देखा ये पहले पृथ्वी में घटित होगा दूसरी से लेकर क्या होगा सातवीं तक 22 प्रकृतियों के जघन्य अनुभाग कर्म का 22 कौन से है
अनंतानुबंधी 22 प्रकृति का जघन्य का
मिथ्या तो 12 कशा और 9 कशा अनंतानुबंधी समय समय मिथ्या तो कुछ उसका जघन्य अनुभाग सत्कर्म का जघन्य काल अंतर्मूर्त होगा
ये तो भीतर योजना में होगा ना
मिथ्यात्व आदि के विषय योजना कहाँ
सॉरी मिथ्यात्व का जघन्य को वहां पे कैसे होगा
विषय योजना के बाद देखा था क्या हमने स्वामित्व में क्या देखा था कल नारकियों में स्वामित्व जघन्य का जघन्य की बात जघन्य का स्वामी
कल पीती थी
वन 183 कल हमने देख लिया था
नहीं आगे पीछे भी नहीं है
183
कल पढ़ा था पर मालूम नहीं
183 बराबर है आपका दूसरी से लेकर सातवीं पृथ्वी तक में जिसने अनंतानुबंधी की विसर्जना की ऐसे समय दृष्टि के होते बराबर है
तो अनंतानुबंधी को छोड़ना पड़ेगा ये 22 प्रकृति में
क्या क्या
अनंतानुबंधी के सिवा की बात है ना
हमने 12 कषाय लिया ना अनंतानुबंधी के अलावा अन्य विसर्जना में ही है सम्यक सम्यक मिथ्यात्व में तो जघन्य होगा ही नहीं और अनंतानुबंधी का जघन्य तो संयोजना होने पर
सही होता है
ये तो नरक में हो गया तिर्यंचों में के किसके होगा जघन्य
एकेंद्रियों में
तो एकेंद्रियों में जो हत समुत्पत्ति करता है वो अधिक से अधिक या कम से कम जघन्य कितने काल तक तो कम से कम एक समय तक और अधिक से अधिक अंतर्मूर्त और अजघन्य का काल एक समय के लिए मरकर अन्यत्र चला जाएगा अभी मार्गनाव में देख रहे हैं और उत्कृष्ट काल असंख्यात लोग ये सम्यक सम्यक मिथ्यात्व का ऐसे ही ले लेना सम्यक्त्व का जघन्य तो कृतकृत्य वेदक की अपेक्षा हम कहेंगे एक समय और अजघन्य का जघन्य काल
अंतर
वो जगन्य जो जगन्य नहीं है तो उत्कृष्ट ले सकते वहाँ पर। तो उद्वेलना करने वाला एक समय के लिए रहा तो उसका एक समय लेने और अधिक से अधिक काल वह जगन्य का ने हमने जो उत्कृष्ट का काल देखा था तिरंचो में रखना है उसको ओघ में नहीं। तो तीन पल्ले वाला रखना उसके पहले पल्ले का असंख्यात अभाव यानी तिरंच ने संगी पंचेंद्रिय में उसने सम्यक को प्राप्त किया तो सत्ता तैयार हुई तो उत्कृष्ट अनुभव हुआ। उत्कृष्ट है ना वो अजगण्य है। फिर पल्ले के असंख्यात भाग तक उद्वेलना करता रहा एक इंद्रिय में वेलना उद्वेलना पूरी होने के पहले ही फिर सम्यक को प्राप्त कराना उपशम सम्यक को प्राप्त कराना कहां भूभू में जाकर यानी बीच में यथायोग्य संगी में आ जाएगा वो। फिर तीन पल्ले तक रहा वहां समय दृष्टि तो उसका उत्कृष्ट ही रहा जो पल्ले के असंख्यात भाग अधिक तीन पल्ले। अनंतानुबंधी में जगन्य का जगन्य और उत्कृष्ट काल एक समय हमने देखा था क्योंकि वो पहले समय में ही जगन्य करता है और अजगन्य का जगन्य काल एक समय है। और उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्गल परावर्तन क्योंकि तिरंच में आने पर अजगन्य से ही आया और इतने काल तक ऐसा लेना वहां पर क्योंकि जगन्य के बाद यानी उसको विसंयोजना के बाद अजगन्य शुरू करेंगे तो असंख्यात पुद्गल परावर्तन रहेगा कि नहीं रहेगा
नहीं।
तो आधा अर्धे परावर्तन में चला जाएगा हाँ तिरंच में से अन्य भाव में। चलो अभी हम आगे पढ़ेंगे इसमें ये तो पूरा ही लंबा चौड़ा फिर दोबारा पांचवी पुस्तक ही लेनी पड़ेगी अपनी। तो यहाँ हम फिर पढ़ते हैं आदेश से 47 पृष्ठ पर 144 नंबर का पॉइंट नीचे से चौथी लाइन आदेश से सब नारकी सब तिरंच मनुष्य अपर्याप्त देव और उपरिम ग्रेवेक तक के देवों में अनुभाग विभक्ति के समान भंग है। मनुष्यत्रिक में मिथ्यात्व और आठ कषायों के जघन्य अनुभाग संक्रम का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है।
कैसे होगा एक समय
हाँ उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त कैसा और जघन्य काल एक समय कैसा।
मिथ्यात्व में
कहना चाहते हैं कोई ओग में मिथ्यात्व आठ कषायों का जगन्य किसके होता है
सपना में नहीं 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 एक इंद्रिय
में तो एक इंद्रिय में से जगन्य करके आया है वो
एक समय के लिए जगन्य रहा
तो वहाँ जगन्य काल बिता एक समय बाकी तब मनुष्य में
आया।
या जगन्य कितने काल तक रहता है अंतर्मूर्त तक रहता है तो जगन्य करके यहाँ आ गया है अंतर्मुक्त तक रहेगा जगन्य फिर अजगन्य हो जाएगा। और जगन्य अनुभाग संक्रम का आठ कषायों का एक समय तथा मिथ्यात्व का अंतर्मूर्त और सबका उत्कृष्ट काल अपनी अपनी काय स्थिति प्रमाण है। देखो इसका विशेषार्थ में खुलासा कर रहे हैं मेरे ख्याल से पहले ये पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। सम्यक्त्व आठ कषाय और पुरुष वेद के जघन्य अनुभाग संक्रम का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है ये मनुष्य त्रिक में ही बात चल रही है ना तथा आठ नौ कषाय पहले आठ कषाय लिए अभी आठ नौ कषाय और सम्यक मिथ्यात्व के जघन्य अनुभाग संक्रम का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है क्योंकि हमने देखा था छह नौ कषाय का तो होता ही है त्रिवेद और नपुसक वेद का भी अंतर्मूर्त तक जघन्य होता है लगाता है और मनुष्य त्रिक में तो ये क्षपणा में वगैरह होगा ही। सम्यक्त्व आदि उन्हीं सब प्रकृतियों के अजगन्य अनुभाग संक्रम का जगन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थिति प्रमाण है। अजगन्य यानी जो उत्कृष्ट रहेगा, जिसकी सत्ता है अपने स्थिति प्रमाण वो रह सकता है।
अजगन्य है तो वहाँ पे जगन्य से अजगन्य होगा ना, उत्कृष्ट का तो बात ही नहीं।
सम्यक तो का जगन्य से अजगन्य होगा ही कैसे? जगन्य तो मात्र क्षपणा के अंतिम आवली प्लस एक समय में रहता है, तो उसका अजगन्य कैसे लेना? कि सत्ता नहीं थी और तैयार हुई तो अजगन्य ने उत्कृष्ट है, उसको अजगन्य कहेंगे हम। तो मनुष्य त्रिक में कैसे लेना? जितनी मनुष्य की स्थिति है उतनी उसकी रही स्थिति। समय तो प्राप्त करके छूट गया है, अभी समय तो में रहेगा तो लगातार मनुष्य नहीं रहेगा, इसलिए पहले भव में समय तो प्राप्त करके छूट गया उसका। और ये मनुष्य के भव कितने हैं? पूर्व कोटि पृथक्त्व। और उसकी सत्ता कितने काल तक रहती है? पल्ले के असंख्यात भाग तक, यानी पूरे वो अभी मिथ्या तो मिथ्या तो मिथ्या तो में रहेगा, तो उसकी सत्ता तो रहेगी ना सम्यक प्रकृति की।
नहीं, यहाँ पे सम्यक तो आदि उन्हीं सब प्रकृति का अजगन्य अनुभाग संक्रम का जगन्य काल एक समय, सो श्रेणी से नीचे उतरा और एक समय में मरण होगा, वो पक्षा होगा ना अजगन्य का।
श्रेणी में क्या इसका जघन्य हो सकता है?
नहीं होता है। तो अजगन्य का एक समय
कैसा घटित?
श्रेणी में से उतरा, एक समय के लिए संक्रमण हुआ और उद्भरण हो गया।
श्रेणी में से उतरने से श्रेणी में क्या हुआ? उसमें
असंक्रामक हो गया।
क्यों?
उपशम श्रेणी चढ़ा था।
हाँ, तो
असंक्रामक हो गया
नहीं हुआ ना। सम्यक प्रकृति की जब तक सत्ता है उत्कृष्ट ही रहता है।
सम्यक्त्व की बात नहीं करती, तो भी तो सम्यक्त्व का अजगन्य
होने की असंक्रामक नहीं होते।
नहीं होते तो सम्यक्त्व का अजगन्य का एक समय कैसे होगा?
उद्वेलना में होगा।
अच्छा, मनुष्य गति में आया,
मनुष्य गति में आया और उद्वेलना पूरी हो गई उसकी। उत्कृष्ट है ना, यानी उसको अजगन्य कहेंगे।
हाँ।
अनुदिश से लेकर सर्वार सिद्धि तक के देवों में अनुभाग विभक्ति के समान भंग है, इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। वहाँ भी जगन्य होगा तो अनंतानुबंधी की विसंयोजना वाले के हो जाएगा वहाँ पर जगन्य विशेषा। यहाँ पर मनुष्य त्रिक में सब प्रकृतियों के जगन्य और अजगन्य अनुभाग संक्रम के काल का अलग से निर्देश दिया है। खुलासा इस प्रकार है, यह संभव है कि कोई जीव सूक्ष्म एकेंद्रिय के हतसमुत्पत्तिक अनुभाग के साथ मनुष्य त्रिक में कम से कम एक समय तक, वहां से आया है ना, और अधिक से अधिक अंतर्मूर तक रहे। मनुष्य में रहे ऐसा नहीं, जगन्य अनुभाग के साथ रहे वो बात है, क्योंकि एक समय में मनुष्य में रहेगा और मर जाएगा ऐसी बात नहीं है। पहले क्या लिखा है?
सूक्ष्म
एकेंद्रिय के हतसमुत्पत्तिक अनुभाग के साथ, यानी उतना ही अनुभाग कितने समय तक रह सकता है? एक समय तक रह सकता है या अधिक से अधिक अंतर्मूर्त तक। इसलिए तो इनमें मिथ्यात्व और मध्य की आठ कषायों के जगन्य अनुभाग संक्रम का जगन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त कहा। ये बात ख्याल में आई ना? तथा इनमें मिथ्यात्व के अजगन्य अनुभाग संक्रम का जगन्य काल अंतर्मूर्त, इनकी जघन्य आयु की अपेक्षा आठ कषायों का जघन्य काल एक समय, ये अपेक्षा के बाद कॉमा लगा लेना, यानी जघन्य आयु की अपेक्षा है। अभी आठ कषायों की बात बता रहे, आठ कषायों का जघन्य काल एक समय उपशम श्रेणी की अपेक्षा
या मरण के,
मनुष्य त्रिक है ना तो मार्गणा बदल गई। और सबका उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थिति प्रमाण काय स्थिति की अपेक्षा कहा है, ये तो हमने घटित किया था। सम्यक्त्व तथा चार अनंतानुबंधी और चार संज्वलन के जघन्य अनुभाग संक्रम का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय इसलिए कहा है क्योंकि इनका जघन्य अनुभाग संक्रम एक समय के लिए ही प्राप्त होता है। सम्यक्त्व का तो जब क्षपणा में एक आवली एक समय बाकी है तब, अनंतानुबंधी में संयोजना करने पर
एक समय के लिए,
और चार संज्वलन में लोभ में तो अंतिम ले लेना अवली प्रत्येक समय,
एक अवली
और क्रोध मान माया लोभ में
अंतर
जो अंतिम बंद हुआ है अनुभव
नहीं, एक अवली एक समय के लिए।
तो दो समय कम दो अवली के पश्चात उसका उतना जघन्य रहेगा, वहाँ उसका संक्रमण भी होगा। वो जो स्वामित्व को देखकर जान लेना चाहिए तथा सम्यक्त्व के अजघन्य अनुभाग संक्रम का जघन्य काल एक समय उद्वेलना की अपेक्षा है ना, यहाँ पर मैंने भी नहीं देखा था ये, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता ही नहीं ना उसके, अजघन्य ने उत्कृष्ट रखना उसको एक समय के लिए। अनंतानुबंधी के अजघन्य अनुभाग संक्रम का जघन्य काल एक समय अपने स्वामित्व के अनुसार इनमें एक समय तक रखने की अपेक्षा तथा चार संज्वलन के अजघन्य अनुभाग संक्रम का जघन्य काल एक समय उपशम श्रेणी की अपेक्षा कहा है।
यह अजघन्य अनुभाग का अनंतानुबंधी में एक समय सुसंयोजना की आवली के पश्चात जघन्य होगा और पीछे दूसरे समय में अजघन्य हो गया और मरण हो गया, ऐसे ले सकते हैं ना,
अजघन्य का एक समय ना,
कितना जल्दी मरण नहीं होगा, होगा ना संयोजना की कावली के पश्चात जघन्य हुआ पीछे अजघन्य
अनंतानुबंधी के अजघन्य अनुभाग संक्रम का जघन्य काल एक समय,
क्योंकि भी संयोजना के पहले तो ले नहीं सकते क्योंकि मरण नहीं होगा।
विसंयोजना में तो मरण, संयोजना में भी मरण नहीं होता है एक मन, एक समय में
तो अजघन्य
पर आवली के बाद हो सकता है। अवली और एक समय लिया ना, अवली दो समय मिनिमम अंतर्मुर्त तो हो जाएगा उसमें। यहाँ स्वामित्व में अनंतानुबंधी का अलग लिखा है क्या इसी पुस्तक में? थर्टी नाइन पुष्प है, अनंतानुबंधी का भंग तो ओघ में जैसा है वैसा ही सर्वत्र बताया ना, क्योंकि अनंतानुबंधी का कथन सबके लिए समान है।
वहाँ पे तो अजघन्य का एक समय घटित नहीं होगा,
अजघन्य का एक समय
वहाँ पे घटित नहीं होगा।
हाँ नहीं होगा,
नहीं होगा, और यहाँ पे एक समय बताया तो मरण की अपेक्षा ही होना चाहिए ऐसा लगता है।
मरण की ही अपेक्षा होगी संयोजन, क्योंकि इसका संक्रामक तो आवली के पश्चात होता है।
एक समय तो दो समय प्लस एक अवली के लिए,
एक समय के लिए जघन्य किया, दूसरे समय में अजघन्य किया और फिर
तीसरे समय में मर गया,
तो वैसे ही ले सकते एक अवली और दो समय हो गए ना। हाँ अंतर्मूर्त है मिनिमम काल उसका, अवली और दो समय हो गए अभी उसके। मरण
के साधन
मरण अंतर्मूर्त तक नहीं है,
सासादन में मरण हो सकता है।
सासादन में मरण हो होगा
बराबर, एक अवली और एक सभी से योद्धा की है, एक अवली और एक समय,
परंतु उसका सासादन में एक अवली और एक समय तक रहा।
हाँ।
संक्रामक हो गया जगन्य।
हाँ।
फिर असंक्रामक हुआ।
हाँ।
और फिर मर गया,
मरण गया। सासादन में मरण हो सकता है,
सासादन में अवली और दो समय में मर गया ऐसा ले सकते हैं। तो फिर मनुष्य त्रिक में ही क्यों लिखा उसको? कहाँ गया अपना विशेषार्थ में देख लेते ना। अनंतानुबंधी के अजघन्य अनुभाग संक्रम का जघन्य काल एक समय, सासादन में ही लेना पड़ेगा। या ऐसा भी ले सकते हैं ना, संसाधन में आया है, जगन्य के बदले अजगन्य किया उसने, क्यों? जब हर जीव जगन्य नहीं करेगा,
अजगन्य का एक समय बताया ना,
बोले ना अजगन्य के रूप से एक समय तक रहा
और नहीं पीछे मित, नहीं,
यानी उसको जगन्य करके अजगन्य करने की भी जरूरत नहीं थी, ऐसा मुझे कहना है। सब लोग तो जगन्य करते नहीं, ऐसा हमने देखा था, किसी के होगा ना जगन्य, तो इसने डायरेक्ट किया तो अजगन नहीं किया, और उसका संक्रमण आवली के बाद हुआ। यानी आवली में मरा है, दो समय बाद मरा, तो ऐसा वही हो जाता है। मिथ्यात्व में अंतर्मुहूर्त तक मरण नहीं, ऐसा कहते हैं। हाँ, अभी हम यहाँ पढ़ रहे थे, अनंतानुबंधी के अजगन्य अनुभाग संक्रम का जगन्य काल एक समय अपने स्वामित्व के अनुसार इनमें एक समय तक रखने की अपेक्षा तथा चार संज्वलन के अजगन्य अनुभाग संक्रम का जगन्य काल एक समय उपशम श्रेणी की अपेक्षा कहा है। इनके अजगन्य अनुभाग संक्रम का उत्कृष्ट काल किसकी? चार संज्वलन के अजगन्य का काल एक समय कैसे? उपशम श्रेणी से उतरते हुए एक समय तक अजगन्य किया और फिर मर। इनके अजगन्य अनुभाग संक्रम का उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट काय स्थिति प्रमाण है। हाँ? हाँ, आदेश में देख रहे हैं।
एक समय के लिए जगन्य का संक्रमक हुआ और पीछे
मरकर अन्य गति में चला गया, क्योंकि देव हुआ ना वहाँ पर। हाँ। मरकर तो देव मनुष्य में एक समय घटित हुआ, और अजगन्य अनुभाग संक्रम का उत्कृष्ट काल, यानी वो शादी शांत वाला उत्कृष्ट काल लेना है, अपनी अपनी उत्कृष्ट काय स्थिति प्रमाण यह स्पष्ट है। यानी उसने जगन्य किया ही नहीं ना।
हाँ। हाँ। पूरी काय स्थिति
इस मार्गणा में आया तो अजगन्य ही था। हाँ। वो अजगन्य ही रहा। सम्यक मिथ्यात्व और आठ नौ कषायों के जगन्य अनुभाग संक्रम का जगन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त इसलिए कहा है क्योंकि वह अपने अपने अंतिम कांडक के पतन के समय होता है। ये तो हमने पहले भी देखा था, उसका स्वामित्व, जो स्वामित्व को देखकर जान लेना चाहिए। उसमें अलग अलग किए थे, स्त्री वेद कहा था अलग, नपुंसक वेद अलग कहा था, और छह कषाय अलग कहे थे, तथा सम्यक मिथ्यात्व के मिथ्वा हुआ है, सम्यक मिथ्यात्व के अजगन्य अनुभाग, सम्यक मिथ्यात्व के अजगन्य अनुभाग संक्रम का जगन्य काल एक समय उद्वेलना की अपेक्षा, उद्वेलना करता है तो उसका उत्कृष्ट ही रहा, एक समय में अंतिम कांडक गिर गया तो संक्रमण रुक गया, और आठ नौ कषायों के अजगन्य अनुभाग संक्रम का जगन्य काल एक समय उपशम श्रेणी की अपेक्षा कहा, यानी उसका संक्रमण रुक गया था, उतरते समय शुरू हुआ
मरण के,
तो एक समय रहकर मरण हुआ। इनके अजगन्य अनुभाग संक्रम का उत्कृष्ट काल अपनी अपनी काय स्थिति प्रमाण है, यह स्पष्ट ही है। यानी थ्रू आउट वो जगन्य हुआ ही नहीं, अजगन्य ही रहा। यहाँ पर जहाँ उद्वेलना की अपेक्षा एक समय काल कहा है, सो उसका भाव यह है कि सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व के उद्वेलना संक्रम में एक समय शेष रहने पर मनुष्य त्रिक में उत्पन्न करावे, और इनके अजगन्य अनुभाग संक्रम का जगन्य काल एक समय ले आवे। इसी प्रकार जहाँ पर उपशम श्रेणी की अपेक्षा एक समय काल कहा है, सो इसका यह अभिप्राय है उपशम श्रेणी में उतरते समय यथास्थान, क्योंकि हर एक प्रकृतियों का कहाँ कहाँ शुरू होगा वो अलग अलग है, यथास्थान उस प्रकृति का एक समय तक अजगन्य अनुभाग संक्रम करावे और दूसरे समय में मरण कराकर देवगति में ले जावे। शेष कथन अनुभाग विभक्ति को, विभक्त को नहीं, विभक्ति को देखकर घटित कर लेना चाहिए, जो हमने देख लिया अभी मार्गणा में भी। यहाँ तक हमने एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट का काल और जघन्य का काल देखा। अब अंतर देखेंगे। एत्तो एय जीवेण अंतरम। आगे एक जीव की अपेक्षा अंतर का कथन करते हैं। अधिकार की संभाल करने वाला यह सूत्र सुगम है। मिच्छत्तस्य उक्कस्य अनुभाग संकामयंतरम केवचिरम कालादो होदि। मिथ्यात्व के उत्कृष्ट अनुभाग के संक्रामक का कितना अंतरकाल है, यह सूत्र सुगम है। जहन्येन अंतोमूर्तम। जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है, क्योंकि किसी ने उत्कृष्ट किया, अनुत्कृष्ट हुआ, फिर उसका फिर अंतर्मूर्त में उत्कृष्ट का बंद करके उत्कृष्ट संक्रमण किया, तो जघन्य अंतर कहे रह गए। यानी जिसको हम कहें ना, अनुत्कृष्ट का जघन्य काल कितना है, अंतर्मूर्त। यथा कोई उत्कृष्ट अनुभाग का संक्रामक जीव अनुत्कृष्ट अनुभाग को प्राप्त होकर और जघन्य अंतर्मूर्त काल तक उत्कृष्ट का अंतर करके, यानी वो उत्कृष्ट का अनुत्कृष्ट हो गया तो उसने उत्कृष्ट संक्रमण का अंतर किया, फिर पहले के समान उत्कृष्ट अनुभाग का संक्रामक हो गया, क्योंकि फिर उसने बंद किया तो उत्कृष्ट का संक्रामक हुआ। इस प्रकार उत्कृष्ट अनुभाग के संक्रामक का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है। उक्कस्येन असंख्येज्जा पोगल परियट्टा। उत्कृष्ट अंतर असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है, क्योंकि उत्कृष्ट संक्रामक कौन होगा, जो संगी पंचेंद्रिय उत्कृष्ट संक्लेश करने वाला
जी।
अब वो एक इंद्रिय में इकलेन्द्रिय में रहा इतने काल तक, जब दोबारा जाके पंचेंद्रियों में उत्कृष्ट बंद करेगा तब उसका उत्कृष्ट संक्रमण होगा। शंका, वह कैसे? समाधान, कोई संगी पंचेंद्रिय जीव उत्कृष्ट अनुभाग का बंद करके उसका संक्रमण करता हुआ तथा कांडक घात के द्वारा अनुत्कृष्ट को प्राप्त होकर, क्योंकि उसका जघन्य अंतर्मूर्त में कांडक के द्वारा अनुत्कृष्ट होता है और रेगुलर जरा बड़ा अंतर्मूर्त लगेगा, इसलिए अंतर बड़ा करने के लिए उसको जल्दी में जल्दी अनुत्कृष्ट कराया और उसके साथ एकेंद्रियों में अनंत काल तक रहकर पुनः संगी पंचेंद्रियों में उत्पन्न होकर तथा उत्कृष्ट अनुभाग का बंद कर उसका संक्रामक हो गया, इस प्रकार उसका अंतरकाल प्राप्त होता है। अनुकस्सानुभाग ऊपर लिखा ना, उत्कस्सानुभाग संकाम। अनुकस्सानुभाग संकामयंतरम केवचिरम कालादो होदी। उसके अनुत्कृष्ट अनुभाग के संक्रामक का कितना अंतर है, किसकी बात चल रही है?
मिथ्यात्व
के अनुत्कृष्ट अनुभाग का संक्रामक का अंतर। अंतर कब होगा? जब जो उत्कृष्ट करेगा तो अनुत्कृष्ट का अंतर पड़ेगा, तो उत्कृष्ट लगातार कितने समय तक हो सकता है? अंतर्मूर्त तक तो रहेगा ही। देखो विभक्ति में तो एक समय के लिए उत्कृष्ट बांधा, दूसरे समय में नहीं बांधा, उसमें तो होता है, वो भी स्थिति में, परंतु यहाँ तो अनुभाग जो बंधा है वो तो लगातार अंतर्मूर्त तक तो रहेगा ही रहेगा, अंतर्मूर्त में फिर वो अनुत्कृष्ट हो जाएगा। इसलिए अनुत्कृष्ट का संक्रामक का अंतर कितना है, तो कहते जघन्य उत्कस्सेन अंतोमूर्तम। जघन्य और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है। यथा मिथ्यात्व के अनुत्कृष्ट अनुभाग का संक्रम करने वाला जीव उसका उत्कृष्ट अनुभाग करके, यानी बंद करके अंतर्मूर्त काल तक उत्कृष्ट अनुभाग का ही संक्रम करके पुनः कांडक घात के द्वारा अनुत्कृष्ट अनुभाग का संक्रामक हो गया, इस प्रकार मिथ्यात्व के अनुत्कृष्ट अनुभाग के संक्रम का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर प्राप्त हो जाता है। मात्र इतनी विशेषता है कि जघन्य अंतर की विवक्षा होने पर अतिशीघ्र कांडक घात कराना चाहिए और उत्कृष्ट अंतर की विवक्षा होने पर बहुत बड़े अंतर मुहूर्त के द्वारा कांडक घात कराना चाहिए। वो तो रेगुलर घात होता है, वहाँ कांडक रूप में नहीं होता परंतु घात हो जाता है अनुभाग का। एवं सोलह सकसायण नव नौकसायणम, इसी प्रकार सोलह कषाय और नौ नौकसायों का अंतरकाल जानना चाहिए।
ये उत्कृष्ट बंद करके जो एक द्वीप में चला जाएगा उसका कांडक का जल्दी हो जाएगा
क्या? क्या
उत्कृष्ट बंद किया और पीछे एक द्वीप में चला गया तो उसका कांडक जल्दी शुरू हो जाएगा?
नहीं
नहीं ना,
कांडक के लिए वो किस पद्धति से कांडक करता है, कांडक घात के द्वारा कम करने में छोटा अंतर मुहूर्त लगता है, वो तो पंचेंद्रिय में भी हो सकता है
विशुद्धि के लिए।
और पंचेंद्रियों में जो ऐसा ना, एकेंद्रियों में जाने वाला कौन जा सकता है उत्कृष्ट बंद करके? देवी जाएगा, एक समय में तो मनुष्य की रेंज से जाएंगे नहीं, अंतर्मुर्त के बाद जाएंगे। हमने स्थिति विभक्ति में देखा था ना,
अंतर्मुर्त के बाद जाएंगे।
देखो सोलह कषाय और नौ नौ कषायों की बात कर रहे हैं। जिस प्रकार मिथ्यात्व के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग के संक्रामकों के जघन्य और उत्कृष्ट अंतर का कथन किया है, उसी प्रकार इन कर्मों का भी कथन करना चाहिए, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। अब इन कर्मों के अनुत्कृष्ट अनुभाग के संक्रामक संबंधी विशेषता का कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। यानी उत्कृष्ट का जो अंतर है वो मिथ्यात्व के समान कितना है? उत्कृष्ट का अंतर
अंतर है। नहीं, उत्कृष्ट का अंतर
जैसे उत्कृष्ट का जघन्य अंतर अंतर्मुर्त और उत्कृष्ट का लंबा अंतर है तो
अनंत काल,
असंख्यात उद्गल परावर्तन
अनंत काल।
हाँ, अनंत काल। अब अनुत्कृष्ट में कुछ अंतर है, अनुत्कृष्ट के अंतर में वेरिएशन फर्क है वो बता रहे भी। नवरी बारस कषाय नव नौ कषायाणम अणुकसाणुभाग संकामयंतरम जहन्येन एय समौ। किंतु इतनी विशेषता है कि बारह कषायों और नौ नौ कषायों के अनुत्कृष्ट अनुभाग के संक्रामकों का जघन्य अंतर एक समय है। ये तो ख्याल में आया होगा,
उपशम श्रेणी में होगा।
उपशम श्रेणी में उतरते समय वहाँ अनुत्कृष्ट है और मरकर अन्य में चले गए, परंतु वहाँ कैसे ले लेना?
क्या तो ये ओक की अपेक्षा बात चल रही है ना अभी अपनी,
ओक की बात चल रही
है। तो ये
नहीं, फिर ऐसा करना, वो श्रेणी में रुक गया वही अंतर हुआ, नहीं समझे? मनुष्य में श्रेणी मांडेगा, पहले क्या कर रहा था, अनुत्कृष्ट था ना उसका अनुभाग। हाँ। कितना था श्रेणी में चढ़ते समय? अनुत्कृष्ट था, तो अनुत्कृष्ट कर रहा था। फिर उपशमना की, जिस जिस कर्म की जहाँ पर होती है, तो उपशमना के ने एक समय के लिए वो असंक्रामक हो गया।
अच्छा, और मर गया
और मरकर देव में संक्रामक हो गया
एक समय के लिए असंक्रामक।
तो असंक्रामक
अनुत्कृष्ट का अंतर एक समय के लिए होगा,
एक समय के लिए अंतर है। ख्याल में आई बात? चढ़कर उतारना नहीं उसको, क्योंकि उतार के एक समय में मर गया तो भी यहाँ भी अनुत्कृष्ट था, वहां भी देव में भी अनुत्कृष्ट था, वो तो नहीं चलेगा। चढ़ते समय ही अनुत्कृष्ट था, फिर संक्रमण रुक गया एक समय के लिए, यानी असंक्रामक हुआ और मरकर देव हुआ तो संक्रामक हुआ। ख्याल में आती है बात? देखो, एक बारह कषाय और नौ नौ कषाय, अनंत अनुबंधी में तो अलग उसका संयोजना विसंयोजना की अपेक्षा होता है, इसलिए उसको यहाँ नहीं लिया। तो उसका कारण देखते हैं हम, 152 नंबर का पॉइंट। अपनी अपनी सर्वोपशमना के द्वारा एक समय का अंतर करके, ख्याल में आई बात? सर्वोपशमना, उसकी उपशमना हुई यही अंतर हुआ, और फिर उसी समय उसको सेकंड समय मरकर देह हुआ, तो वहाँ संक्रमण शुरू हुआ। दूसरे समय में मरकर देवों में उत्पन्न होने के प्रथम समय में पुनः इनका संक्रम प्राप्त होने पर उक्त कर्मों के अनुत्कृष्ट अनुभाग के संक्रामकों का जघन्य अंतर एक समय उपलब्ध होता है। अब जो जिसको छोड़ा था अनंतानुबंधी को ले रहे, अनंतानुबंधिनम अनुकस्स अनुभाग संक्रामयंतरम जहन्नेन अंतोमूर्तम। अन्यत्र कितना लिखा था? एक समय। क्यों? उपशम श्रेणी में संक्रामक से असंक्रामक हुआ और देव में जन्मा तो फिर संक्रामक हुआ। अनंतानुबंधी में तो ऐसी बात नहीं है। विषयोजना में क्या हुआ? अनुत्कृष्ट था, अंतर हुआ, फिर संयोजना हुई और आवली में उसका संक्रमण शुरू हुआ। जघन्य है वो भी अनुत्कृष्ट ही होगा ना, तो ये अनुत्कृष्ट का अंतर कहलाएगा। तो अनंतानुबंधियों के अनुत्कृष्ट भाग संक्रमण का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है। वह कैसे? अनुत्कृष्ट अनुभाग का संक्रम करने वाला जीव अनंतानुबंधियों की विसंयोजना करके, यानी विसंयोजना में भी अनुत्कृष्ट ही था, अब उसके बाद असंक्रामक हुआ, पुनः अंतर्मूर्त में उनसे संयुक्त होकर उनका संक्रामक हो गया। इस प्रकार इनके अनुत्कृष्ट अनुभाग के संक्रामक का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त प्राप्त हो जाता है। प्रेरणा बेनी बात ख्याल में आ रही है? अब अनंतानुबंधी के अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट अंतर, अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट अंतर, यानी कैसे रहना? विसंयोजना की और लंबे काल तक विसंयोजना में ही रहा,
दो चार साल
फिर बाद में जाके उसने संयोजना की। तो कहते हैं उपकस से न बेछावर्ती सागरोमाने साधिरे, यानी उत्कृष्ट अंतर साधिक 266 सागर प्रमाण है। वह कैसे? अभी साधिक करने के लिए उसके उपशम समय के काल में अनंतानुबंधी की विसंयोजना कराना है, क्योंकि उपशम समय के काल के भीतर अनंतानुबंधियों की विसंयोजना करके तथा 266 सागर काल तक परिभ्रमण करने के बाद, यानी बीच में सम्यक मिथ्या तो में आया है, तो अनंतानुबंधी की विसंयोजना वाला आ सकता है, फिर मिथ्यात्व को प्राप्त होकर एक आवली काल के बाद, क्योंकि संक्रम की बात चल रही, स्थिति विभक्त सॉरी अनुभाग विभक्ति की नहीं, तो इसलिए एक आवली और बढ़ा देना उसमें। इनका संक्रम करने वाले जीव के उक्त अंतर प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर साधिक का प्रमाण अंतर्मूर्त है, क्योंकि उपशम समय के काल में उसने पहले ही कर लिया अनंतानुबंधी का विसंयोजना, तो वहाँ एक अंतर्मूर्त तक रहा वो विसंयोजना के साथ, उतना 266 सागर में ज्यादा है। सम्मत सम्मामिच्छत्तानम उक्कस्सानुभाग अनुकरणा उक्कस्सानुभाग संकामयंतरम केवचिरम कालादोहोदि। सम्यत्व और सम्यक मिथ्यात्व के उत्कृष्ट अनुभाग के संक्रामक का अंतरकाल कितना है? देखो अभी हमें ऐसा विचार करना है, उत्कृष्ट संक्रामक कौन है? जिसके उसकी सत्ता है वो सारे उत्कृष्ट संक्रामक है। उसका अंतर कब होगा? जब उसकी सत्ता मिट जाएगी।
नहीं, आवली में प्रविष्ट होगा तो भी असंक्रामक हो जाएगा। आवली में प्रविष्ट हो जाएगा,
आवली में प्रविष्ट होगा तो भी असंक्रामक होगा।
और एक समय के पश्चात वापस,
तो उसने आवली में प्रवेश हो गया, असंक्रामक हो गया, और फिर
एक समय के
समय में औक्षमिक समय को प्राप्त किया,
एक समय का अंतर हो गया।
यहाँ अंतिम फाली गिरते ही उसने समय को प्राप्त किया, क्योंकि पहले समय में संक्रामक नहीं है वो। हाँ। समझ में ना, उसको औक्षमिक समय को प्राप्त कराना है, फिर संक्रामक हो जाएगा। देखो कितना अंतरकाल पूछा, सम्यक्तर सम्यक मिथ्यात्व के उत्कृष्ट अनुभाग के संक्रामक का अंतरकाल कितना है? यह सूत्र सुगम है, जघन्य अंतर एक समय है। यथा सम्यक्त्व की उद्वेलना करने वाला कोई एक जीव उपशम सम्यक्त्व के अभिमुख होकर तथा अंतरकरण को समाप्त कर मिथ्यात्व की प्रथम स्थिति के अंतिम समय में सम्यक्त्व की अंतिम फाली का संक्रमण करके, ख्याल है ना, क्योंकि उपशम सम्यक्त्व को प्राप्त किया तो पहले समय में जो अभी शुरू हुए हैं वहां उसका तो संक्रमण नहीं होगा, दूसरे समय से होगा। इसलिए क्या करना है इसको, यहाँ इसका अनिवृत्तिकरण का अंतिम समय और उसी समय उद्वेलना की अंतिम फाली गिर रही है, यानी वहां भी संक्रमण हो रहा है, केवल उपशम सम्यक्त्व के पहले समय में संक्रमण नहीं था, ये दूसरे समय से संक्रमण शुरू हुआ। तो उपशम सम्यक्त्व के ग्रहण करने के प्रथम समय में असंक्रामक हो गया और इस प्रकार उसका अंतर करके पुनः दूसरे समय में उसके उत्कृष्ट अनुभाग का संक्रामक हो गया।
ये अंतरकरण को समाप्त कर, ये तो प्रथम उपशम की बात है, बराबर
प्रथम उपशम सम्यक्त्व के पहले की बात है।
सम्यक्त्व के अभिमुख होकर
अंतर को समाप्त कर नहीं कहा, अंतरकरण को समाप्त कर, अंतर बनाने की क्रिया। हाँ। देखो क्या कहते हैं, प्रथम उपशम सम्यक्त्व प्राप्त होता है ना, क्या होता है, अनिवृत्तिकरण में जब प्रवेश करता है तो बहुत सारा भाग बीत जाता है तो हाँ। अंतर करता है, अंतर करता है ना, वो बीच वाले नीचे को ऊपर नीचे हो जाते हैं। हाँ। नीचे वाले उसको प्रथम स्थिति कहेंगे। हाँ। और ऊपर वाले द्वितीय स्थिति। हाँ। कहेंगे। जब तक प्रथम स्थिति में है तब तक मिथ्यात्व का उदय भी है, नया बंध भी है।
हाँ।
तो अभी यहाँ उसकी उद्वेलना भी ऑलरेडी चल ही रही थी।
हाँ।
और वहाँ सम्यक्त्व के अभिमुख भी है, वो अंतरकरण भी कर लिया है उसने, फिर भी पहले प्रथम स्थिति में कुछ निषेक बाकी है उसके।
हाँ।
अब ऐसे करते करते वो एक ही निषेक बाकी है उसका।
हाँ।
प्रथम स्थिति में वहाँ ऑलरेडी वो उद्वेलना कांडक वाले कांडक कर रहा है।
हाँ।
तो उसके अंतिम कांडक की अंतिम फाली वहाँ खिल गई, अनुभाग कांडक घात हुआ, वो अनिवृत्तिकरण का अंतिम समय है।
हाँ।
नेक्स्ट समय में उत्सम समय को प्राप्त किया, तो उत्सम समय को प्राप्त किया
तभी
पहले समय में सम्यक्त्व का संक्रमण नहीं,
नहीं है,
दूसरे समय से शुरू हुआ। मैंने सम्यक्त्व का पहला समय ही उसका अंतर है, जबकि वहां सत्ता है परंतु वहां संक्रमण अभी शुरू नहीं हुआ। अनुभाग विभक्ति की बात करते तो उसको कहेंगे वो अभी अनुभाग विभक्ति है क्योंकि सत्ता में है, हमारा विषय संक्रमण का चल रहा है, इसलिए उसको पहला समय छोड़ के दूसरे समय में उसको उत्कृष्ट का संक्रामक बनाना। इस प्रकार सम्यक्त्व के उत्कृष्ट अनुभाग के संक्रामक का जघन्य अंतर एक समय प्राप्त होता है। इसी प्रकार सम्यक मिथ्यात्व के जघन्य अंतर का भी कथन करना चाहिए, उसकी भी जब अंतिम फाली गिरती है तब उसको सम्यक्त्व प्राप्त कराना चाहिए। अब उपकस्यन वड पोगल पर्यट्टम, उत्कृष्ट अंतर किसका,
सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व,
सम्यक सम्यक मिथ्यात्व के किसका, कौन से पद के,
उत्कृष्ट
संक्रमण का अंतर कैसा प्राप्त होगा, पहले एक भव में उसने
सम्यक्त्व
प्राप्त किया, परावर्तन पहले
सम्यक्त्व प्राप्त,
सम्यक्त्व प्राप्त
पहले किया, संख्यात्व पाक में असंख्यात्व
और फिर मिथ्यात्व में गया और उसने उद्वेलना पूरी कर दी,
पहले का संख्यात्व पाक,
फिर वो बिना सत्ता का रहा और लास्ट में जाकर जब सम्यक्त्व प्राप्त किया तो सत्ता हो गई उसकी, तो उत्कृष्ट का संक्रमण भी शुरू हो गया। यहाँ समाधान पढ़ेंगे, अर्ध पुद्गल परिवर्तन के प्रथम समय में प्रथमोपशम सम्यक्त्व को प्राप्त होकर तथा अतिशीघ्र मिथ्यात्व में जाकर सम्यक्त्व तथा सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना करके अंतर का प्रारंभ किया, पुनः उपार्ध पुद्गल परिवर्तन काल तक परिभ्रमण करके संसार के स्तोक रह जाने पर पुनः उपशम सम्यक्त्व को प्राप्त होकर दूसरे समय में उनका संक्रामक हो गया। इस प्रकार इनके उत्कृष्ट अनुभाग के संक्रामक का उत्कृष्ट अंतर उपार्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण प्राप्त हो जाता है। ये बात ख्याल में आई, बात अनुकस्य अनुभाग संक्रामयंत्रम केवचिरम कालादो होदी, इनके अनुत्कृष्ट अनुभाग के संक्रामक का कितना अंतर है इसमें तो दो ही पॉसिबल है, एक उत्कृष्ट और एक
होगा ही नहीं ना
जघन्य। वैसे बीच में अनुत्कृष्ट होता है, परंतु अनुत्कृष्ट का अंतर नहीं होता। नहीं।
सपना में अनुत्कृष्ट
कब होता है शुरू?
सपना में।
हाँ, सपना में शुरू होता है।
पहले कर्ण
वो लगातार अनुत्कृष्ट कितने काल तक रहेगा?
अंतर्मूर्त तक।
एक अंतर्मूर्त तक, क्योंकि वो एक एक कांडक होते रहते हैं और फिर जाके वो जघन्य हो जाएगा, सपना पूरी होगी। अंतर के लिए दोबारा अनुत्कृष्ट होना चाहिए, वैसा नहीं होगा। अनुकस्त अनुभाग अंतरंग के वचिरम कालादो होदी, अनुत्कृष्ट अनुभाग के संक्रामक का कितना अंतर है प्रश्न चिन्ह। कहते यह सूत्र सुगम है, उसका उत्तर है नत्थि अंतरम, अंतर काल नहीं है, क्योंकि इनका अनुत्कृष्ट अनुभाग दर्शन मुनि की क्षपना में प्राप्त होता है। इस प्रकार ओग प्ररूपणा समाप्त हुई। आदेश से सब मार्गणाओं में अनुभाग विभक्ति के समान भंग है। विशेषार्थ, तात्पर्य है कि जिस प्रकार अनुभाग विभक्ति में नरक गति आदि मार्गणाओं में एक जीव की अपेक्षा अंतरकाल का कथन किया है, उसी प्रकार यहाँ भी उसे अविकल जान लेना चाहिए। अंतरकाल की अपेक्षा उससे यहाँ पर कोई विशेषता नहीं है, यानी जो विभक्ति में हमने देखा था वैसे भी यहाँ पर जान लेना, क्योंकि उत्कृष्ट का अंतर देख रहे हैं ना हम। जैसे नरक में भी ऐसा ही होगा, उत्कृष्ट बंध किया, उत्कृष्ट अनुभव हुआ, फिर वो अनुत्कृष्ट हो गया, एक अंतर्मूर्त में वापस उत्कृष्ट किया, तो वो जघन्य अंतर उसका अंतर्मूर्त हुआ। नरक में शुरू में एक बार उत्कृष्ट किया, फिर अनुत्कृष्ट हुआ, और आखिर में जाके लास्ट में उसने उत्कृष्ट किया, तो उसका उत्कृष्ट
अंतर।
इस तरह से हर एक में सोचना है। अब एक तो जघन्य अंतरम, आगे जघन्य अंतर का कथन करते हैं। जघन्य अंतर यानी जघन्य अनुभाग के अंतर,
जघन्य
अनुभाग संक्रमण का जघन्य तथा उत्कृष्ट अंतर, उसको जघन्य अंतर कहेंगे, यानी जघन्य अनुभाग का अंतर। केवल अनुभाग नहीं, अनुभाग संक्रम। तो उत्कृष्ट अनुभाग के संक्रामक के अंतर का कथन करने के बाद आगे जघन्य अनुभाग के संक्रामक के अंतर का कथन करना चाहिए, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। मिच्छत्तस्य जघन्य अनुभाग संकामयंतरम केवचिरम कालादो होदी, मिथ्यात्व के जघन्य अनुभाग के संक्रामक का कितना अंतर है, यह सूत्र सुगम है। यानी वो जघन्य का अंतर कब करेगा? जघन्य कौन करता है? तो सूक्ष्म निबोध लब्धि पर्याप्त। जघन्य कब होता है? हतो समुत्पत्ति द्वारा। फिर उसने अजगन्य ने थोड़ा उससे ज्यादा बंद किया और अंतर्मूर्त में लौट कर फिर जघन्य, फिर उसने घात किया अंतर्मूर्त में, तो जघन्य हुआ। तो इसका मिनिमम पॉसिबल अंतर हुआ। तो कहते जघन्य न अंतर्मूर्तम, जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है। यथा सूक्ष्म एकेंद्रिय संबंधी हत समुत्पत्तिक रूप जघन्य अनुभाग के संक्रम से अजघन्य अनुभाग को प्राप्त होकर फिर भी अंतर्मूर्त के द्वारा घात कर कोई जीव सबसे जघन्य अनुभाग का संक्रामक हो गया। इस प्रकार मिथ्यात्व के जघन्य अनुभाग के संक्रामक का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त प्राप्त हो जाता है। यानी पहले एक बार घात किया, फिर अजघन्य हुआ, फिर दोबारा घात किया, फिर जघन्य हुआ, तो जघन्य का अंतर कहलाएगा। जो अजघन्य का काल है वो जघन्य का अंतर है। पहले हमने अजघन्य का उत्कृष्ट काल कितना देखा था? असंख्यात लोग देखा, वो यहाँ अंतर बताएंगे। उपकस से ना असंख्य जल होगा, उत्कृष्ट अंतर असंख्यात लोक प्रमाण है, वह कैसे? समाधान, क्योंकि जगन्य अनुभाग का संक्रामक जो जीव अजगन्य अनुभाग को प्राप्त होकर और तत्प्रायोग्य परिणाम स्थानों में असंख्यात लोक प्रमाण काल को गमाकर अन्य अन्य परिणाम होते रहे उसको, वो कितने हैं तो असंख्यात लोक प्रमाण है। पुनः तत्समुत्पत्ति अनुभाग के परिणाम के योग्य जगन्य अनुभाग को प्राप्त हुआ है, उसके उक्त उत्कृष्ट अंतर प्राप्त होता है। देखो एक ही निर्मय में रहने का काल बड़ा है, परंतु ये जीव सूक्ष्म निगोध में हत समुत्पित करता है उसको छोड़कर अन्य में चला गया, इसलिए उसका उत्कृष्ट अंतर असंख्यात लोप होगा। अजहन्न अनुभाग संका में यंत्रम के वचिरम कालादो हो दी उसके उसके ने मिथ्यात्व के अजघन्य अनुभाग के संक्रामक का कितना अंतर है। अजघन्य का अंतर यानी क्या?
जगन्य में रहने
उसने
का
जगन्य में रहने का काल, जगन्य में लगातार रहने के काल वो अजघन्य का अंतर कहलाएगा। तो यह सूत्र सुगम है। जघन्य उपकसेन अंतोमोत्तम, जगन्य और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है, यानी अंतर्मूर्त से अधिक वह हत समुत्पत्तिक रूप से जगन्य नहीं रह सकता, फिर उसका बंध अधिक होगा ही। यथा अजगन्य अनुभाग का संक्रामक कोई एक जीव जगन्य अनुभाग को प्राप्त होकर और वहां जगन्य और उत्कृष्ट रूप से अंतर्मूर्त काल तक रहकर पुनः अजगन्य अनुभाग वाला हो गया, इस प्रकार उक्त अंतर प्राप्त हो जाता है। एवं अठ कषायण, देखो हमने मिथ्यात्व और आठ कषायों का जगन्य एक समान देखा था सूक्ष्म निगोध लब्धि पर्यापकों में, तो यहाँ अंतर में भी वैसा ही ले। इसी प्रकार आठ कषायों का अंतरकाल जानना चाहिए, क्योंकि मिथ्यात्व के स्वामी से इनके स्वामी में कोई भेद नहीं है। अब यहाँ पर प्राप्त होने वाली थोड़ी सी विशेषता का कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, यानी इनकी विशेषता में जो कोई अजगन्य में अंतर जो है उसको बता रहे हैं यहाँ पर। किंतु इतनी विशेषता है, इनके अजगन्य अनुभाग के संक्रामक का कितना अंतर है, यह सूत्र सुगम है। जगन्य न ये समो, जगन्य अंतर एक समय है, क्योंकि सर्वोपशमना के द्वारा अंतर को प्राप्त हुए जीव के उक्त अंतरकाल उपलब्ध होता है। यानी उसने
एक समय
अजगन्य का असंक्रामक हो गया, पहले अजगन्य था असंक्रामक हो गया, मरकर देह हुआ फिर संक्रामक हो गया। सम्मत्त सम्मामिच्छत तानम जहन्न अनुभाग संकामयन केवल चिरम कालादो हो दी, प्रश्न चिन्ह ऊपर चाहिए। मैंने क्या पूछ रहे, सम्यक और सम्यक विख्यात के जगन्य अनुभाग के संक्रामक का अंतर कितना है, क्योंकि उसका जगन्य किसके होता है तो सपना में होता है, तो अंतर नहीं हो सकता। यह सूत्र सुगम है। नत्य अंतरम अंतरकाल नहीं है, क्योंकि क्षपणा में उत्पन्न हुए जगन्य अनुभाग संक्रम की पुनः उत्पत्ति नहीं होती। अब अजगन्य अनुभाग संकामय अंतरम केवल चिरम कालादो हो दी, उनके अजगन्य अनुभाग के संक्रामक का कितना अंतर है, यह सूत्र सुगम है। अभी इनके बारे में अजगन्य ने वो असंक्रामक करा देना, उसको भी उद्वेलना कर पूरे कर
एक समय। हाँ। आगे देखा था ना,
तो अजगन्य अनुभाग का संक्रामक का कितना अंतर है, यह सूत्र सुगम है। जगन्य ने यह समय उपकस्य न उवड्ड पुग्गल पर्यट्टम, जगन्य अंतर एक समय है। अभी जो हमने देखा था अजगन्य था यानी उत्कृष्ट ही था, जो उत्कृष्ट में बताया वही अजगन्य के लिए होगा लागू, कि उद्वेलना करते करते अंतिम कांड कब हुआ, उसका अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय में,
एक समय के लिए असंक्रामक
और एक समय के लिए असंक्रामक है, प्रथम उपशम समय के पहले समय में, दूसरे समय से संक्रामक हुआ, तो ये एक समय अंतर घटित हुआ। और उत्कृष्ट अंतर
उपाध्युत, हाँ,
यानी कुछ कम अर्ध पुद्गल परावर्तन है,
उद्वेलना पूरी कर दी और
ये दोनों सूत्र सुगम है। उद्वेलना करके इतने काल तक वो मिथ्यात्व में रहा। अनंतानुबंधिनम जहन अनुभाग शंका में यंत्रम केवचिरम कालादो हो दी। अनंतानुबंधियों के जघन्य अनुभाग के संक्रामक का कितना अंतर है, यानी एक बार जघन्य किया और दोबारा जघन्य करना चाहिए, तो जघन्य का स्वामी कौन है?
संयोजना
करने वाला। तो अर्लीस्ट दोबारा विसंयोजना करके फिर संयोजना करनी, कितना काल लगेगा? अंतर्मुत लगेगा ना, हाँ। तो कितना अंतर है, यह सूत्र सुगम है। जघन्य न अंतोमूर्तम, जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है। यथा अनंतानुबंधियों के संयुक्त होने के प्रथम समय में हुए नवक बंध एक आवली के बाद जघन्य रूप से संक्रम करके तथा उसके बाद द्वितीय आदि समयों में अजघन्य अनुभाग संक्रम के द्वारा उसका अंतर करके, जघन्य का अंतर हो गया दूसरे समय से, फिर अतिशीघ्र काल के द्वारा विसंयोजना पूर्वक तत्प्रायोग्य जघन्य परिणाम से संयुक्त होकर, ये लिखा ना यहाँ
तत्प्रायोग्य,
हाँ अरविंद भाई ने जो बताया क्या सबको जघन्य होगा, तो कहते तत्प्रायोग्य जघन्य परिणाम से संयुक्त होकर उसी को जघन्य अनुभाग बंधेगा। एक आवली के बाद जो पुनः जघन्य अनुभाग का संक्रामक हो गया उसके उक्त जघन्य अंतर प्राप्त होता है।
सो यहाँ पे क्या सातादर में जघन्य हो सकता है कि मिथ्या तो गुणस्थान में जघन्य होगा? संयोजना करेगा,
हाँ,
तो साधन में जघन्य हो सकता है कि मिथ्यात्व में जघन्य हो सकता है,
ऐसा तो कहीं स्पष्ट लिखा नहीं है यहाँ पर, तो तत्प्रायोग्य जघन्य परिणाम से संयुक्त होकर इतना ही लिखा, हाँ। यानी वो कितना होगा तो अंतर जघन्य अंतर अंतर्मूर्त प्राप्त होता है। उपकस्य न वड्ड पोगल परियट्टम, उत्कृष्ट अंतर उपार्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। यदि सासाधन में अगर हम उसको जघन्य कराते तो क्या अंतर्मूर्त में फिर दोबारा जघन्य होता?
नहीं होता,
क्योंकि एक बार सासाधन होके दूसरी बार सासाधन होने के लिए कितना टाइम लगेगा?
मिथ्या तो नहीं जाना पड़ेगा,
जाने दो ना, फिर दोबारा सासाधन होने के लिए कितना काल लगेगा बता दो। और यहाँ अंतर्मूर्त बताया है, इसका अर्थ हमें जघन्य तो तत्प्रायोग्य भी मिथ्या तो में रह सकते हैं इसको, यानी सासाधन में होगा ऐसा रूल तो कह ही नहीं सकते इसी सूत्र के आधार से। हर में आती है, दो बार सासाधन कराना पड़ेगा उसके लिए, ऐसा तो है ही नहीं है। हाँ, उत्कृष्ट अंतर उपार्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। यथा पूर्वोक्त विधि से ही जघन्य अनुभाग संक्रम का प्रारंभ करके और अंतर करके उपार्ध पुद्गल परिवर्तन काल तक परिभ्रमण करके सिद्ध होने के लिए स्तोक काल शेष रह जाने पर सम्यक्त को प्राप्त होकर तथा अनंतानुबंधी की विसंयोजना पूर्वक परिणामवश उनसे संयुक्त होकर एक आवली के बाद जघन्य अनुभाग का संक्रामक हो गया, इस प्रकार उक्त उत्कृष्ट अंतर प्राप्त हो जाता है। अब आगे अजहन्न अनुभाग संकामय अंतरम केवचिरम कालादो हो दी। इनके अजगन्य अनुभाग के संक्रामक का कितना अंतर है?
अंतर
अनंतानुबंधी की बात चल रही है, उसका अंतर कैसा हुआ? सत्ता में से नष्ट हुआ,
हाँ।
और फिर उत्पन्न कराना सत्ता तो जघन्य अंतर होगा, और लंबे काल तक विसंयोजना में रखना तो उत्कृष्ट अंतर होगा,
शादी के
तो जघन्य अंतर अंतर्मूर्त, जहन्नो जहन्नेन अंतोमूर्तम, जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है। यथा अजघन्य अनुभाग का संक्रामक जीव अनंतानुबंधियों की विसंयोजना द्वारा अंतर करके, क्योंकि विषयना के अंतिम समय तक अजगण्य था, फिर नष्ट हुए, सत्ता ही नष्ट हुई, फिर भी अतिशीघ्र संयुक्त होकर अजगण्य अनुभाग का संक्रामक हो गया। इस प्रकार उक्त अंतर प्राप्त हो जाता है। यह संक्रामक हो गया तो अजगण्य का ही होगा वहां पर। उपकस्य न वे छावर्ती सागरोवमाने सागरे यानी तथा उत्कृष्ट अंतर सादिक दो छासर सागर प्रमाण है। यह था पहले हमने देखा था ना, उसका काल देखा था, यहाँ भी अंतर देख रहे हैं। उपशम सम्यक के काल के भीतर ही अनंतानुबंधी चतुष्क की विसर्जना करके तथा वेदक सम्यक को ग्रहण कर दो छासर सागर काल तक परिभ्रमण कर उसके अंत में मिथ्यात्व में जाकर एक आवली के बाद संक्रम करने वाले जीव के उत्कृष्ट अंतर प्राप्त होता है। यहाँ साधिक का प्रमाण अंतर्मूर्त है। शेषाणम कम्माणम जहन्न अनुभाग संकामयंत्रम केवचिरम कालादोहोदि शेष कर्मों के जघन्य अनुभाग के संक्रामक का कितना अंतर है? क्या यहाँ पर जघन्य का अंतर होगा? क्योंकि क्षपणा में उसको उसका अंतर नहीं होगा।
क्वेश्चन मार्क करना है।
हाँ, यहाँ क्वेश्चन करना, क्वेश्चन मार्क कितना अंतर है। यह सूत्र सुगम है तो कहते हैं नत्थी अंतरम, अंतर काल नहीं है क्योंकि इनका जघन्य अनुभाग क्षपणा में होता है। अजघन्य अनुभाग संकामयंत्रम केवचिरम कालादो होदी इनके अन्य शेष कर्मों के अजघन्य अनुभाग संक्रामक का कितना अंतर है? यह सूत्र सुगम है। कहाँ पर ले जाना उपशम से जघन्य अंतर एक समय है क्योंकि सर्वोपशमना द्वारा एक समय का अंतर करके दूसरे समय में मरकर देवों में उत्पन्न होने के प्रथम समय में संक्रम करने वाले जीव के उक्त अंतर प्राप्त होता है। ये बात ख्याल में आ रही है? पहले हमने वो काल में देखी थी ना, वैसे यहाँ तो अंतर में देखनी है। उपकस्य न अंतोमोत्तम यानी शेष कर्मों का जो उत्कृष्ट अंतर, अंतर क्यों पूरे उपशमित रहे? जघन्य अंतर के लिए उपशमना होते ही एक समय में मरकर देव में गए और उत्कृष्ट अंतर पूरा
श्रेणी उतरते
जहाँ से उसकी उपशमना हो गई है वहां से लेकर उतरते समय जब फिर दोबारा शुरू होगी तब तक का उसका अंतर्मूर्त प्रमाण अंतर होगा। इसलिए कहते उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है क्योंकि सर्वोपशमना के द्वारा अधिक काल तक अंतर करके गिरने के कारण पुनः संक्रम करने वाले जीव के प्रकृत अंतरकाल पाया जाता है। उपशम श्रेणी में तो अंतर हुआ था फिर दोबारा नीचे उतरता है तो संक्रमण शुरू हुआ है। इस प्रकार ओघ प्ररूपणा समाप्त हुई। अब आदेश से देखते हैं, अंतर की बात नारकी आदि में देखेंगे। सब नारकी सब तिर्यंच मनुष्य पर्याप्त और सब देवों में अनुभाग विभक्ति के समान भंग है। अभी उसको उसी मार्गणा में रखते हुए हमको विचार करना है। तो जब किसी का उत्कृष्ट का अंतर देखना है तो उत्कृष्ट किसके होता है? तो वो संक्लेश परिणाम के होता है। उसका अंतर कैसा कहलाएगा? उत्कृष्ट से अनुत्कृष्ट हुआ और वापस उत्कृष्ट हुआ तो एक अंतर्मूर्त में हो सकता है ना? यानी एक ही पर में दो बार उसको उत्कृष्ट कराना है, वो उत्कृष्ट का अंतर होगा। और अनुत्कृष्ट का अंतर कैसा होगा? बीच में उत्कृष्ट करके वापस अनुत्कृष्ट होगा, वो अनुत्कृष्ट का अंतर कहलाएगा।
या नारके में जगन्य का अंतर नहीं होगा ना, जो संगी से आए हुए की अपेक्षा लेते हैं उसका तो अंतर नहीं होगा।
अगर आवली आवली की बात करता है तो अजगन्य का भी अंतर होगा। जगन्य की
बात, जगन्य जगन्य की बात,
जगन्य की बात है। वो जगन्य जो असंगी में से आए हुए की बात करते हैं उसका अंतर नहीं होगा। परंतु अन्य नरकों में जहाँ जगन्य किया है
विसंयोजना के काल में,
विसंयोजना के काल में
दो बार विसंयोजना,
फिर संयोजना हो जाएगी तो उसका फिर शुरू हो जाएगा। मनुष्य त्रिक में दर्शन मोहनीय त्रिक और अनंतानुबंधी चतुष्क का भंग अनुभाग विभक्ति के समान है। अभी इसमें तो यहाँ दर्शन मोहनी में तो क्षपणा भी होती है, इसलिए उसका अनुभाग के समान होता है। 12 कषाय और 9 कषायों के जघन्य अनुभाग संक्रम का अंतरकाल नहीं है, क्षपणा में होता है ना उसका जगह। और जघन्य अनुभाग संक्रम का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है, क्योंकि मनुष्य त्रिक में ही रखना है तो उपशम करके वापस लौटा तो उसका अंतर घटित होगा। इसी प्रकार अनाहरक मार्गणा तक जानना चाहिए विशेषार्थ।
ये मनुष्य अपर्याप्त में किसी का अंतर होगा? मनुष्य अपर्याप्त जीव में उत्कृष्ट वहां नहीं हो सकता है,
अनुत्कृष्ट रहेगा।
हाँ, तो अंतर होगा ही नहीं किसी में भी।
हाँ, जो सूक्ष्म एकेंद्रीय संबंधी हतसमुत्पत्ति कर्म के साथ मनुष्य त्रिक में उत्पन्न होता है उसके मध्य ध्येय करना। उसके मध्य के 8 कषायों का जघन्य अनुभाग संक्रम पाया जाता है तथा 4 संज्वलन और 9 कषायों का जघन्य अनुभाग संक्रम क्षपक श्रेणी में उपलब्ध होता है। इसलिए मनुष्य त्रिक में उक्त प्रकृतियों की जघन्य अनुभाग संक्रम के अंतर का निषेध किया। ये बात ख्याल में आई? दोनों जगह कारण अलग अलग है। 4 संज्वलन 9 कषायों की तो क्षपणा करता है इसलिए अंतर नहीं, और यहाँ एकेंद्रीय में से आए हुए के जघन्य होता है इसलिए फिर पूरे लाइफ टाइम में फिर दोबारा जघन्य होने का चांस नहीं। ये दोनों बातें लेना तथा यहाँ पर उक्त प्रकृतियों के अजघन्य अनुभाग संक्रम का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर उपशम श्रेणी में अंतर्मूर्त प्रमाण प्राप्त होता है इसलिए यह उक्त काल प्रमाण कहा है। शेष अंतर अनुभाग विभक्ति समान होने से उसके अनुसार जानने की सूचना की है। अब यहाँ अपना अनुयोग समाप्त होता है, उस सन्निकर्ष की बात हम कल करेंगे। हाँ, काल समाप्त हुआ, अंतर समाप्त हुआ। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तक नवो सदा देत मोरो। प्रेरणा में